ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज सुबह के सेशन में हम सभी के बीच में हमारी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी कृति बहन जी उपस्थित है। हम सभी एक हाथ के ताली से आपका अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आप बाल्यकाल से ही सपरिवार सहित बाबा के ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे हैं। पिछले 45 इयर्स से आपने अपनी जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित की है। आप हमारी गुजरात के सीनियर फैकल्टी मेंबर के रूप में बाबा की सेवाओं को आगे बढ़ाना, सेवा करना और इनोवेटिव एंड क्रिएटिव सारे प्रोग्राम्स में आप अपना टोटली सफलतापूर्वक सेवाएं दे रहे हैं। आज हम सभी के बीच में यथार्थ याद और उसका प्रयोग कैसे करें उसके बारे में बताएंगे आदरणीय कृति बहन जी। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि हम सभी भाई बहनों को आप योग के माध्यम से उसका प्रयोग कैसे करें उससे लाभान्वित करें। आदरणीय कृति बहन जी।
ओम शांति। ये हम सबका परम सौभाग्य है जो बाबा की इस तपोभूमि में हम इतने दिन रह करके अपनी तपस्या में बल भर के जाएंगे। इस तपोभूमि में आना अर्थात अपने पुरुषार्थ में स्वयं को एक कदम आगे बढ़ाना, समय बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है और ऐसे समय में चाहे वर्तमान काल चाहे भविष्य में आने वाले अंतिम सीन के समय जो सबसे ज्यादा बल भरने वाली चीज है, जो सबसे ज्यादा हमें अचल बनाने वाला विषय है वो है योग। आज हम विषय को दो भागों में देखेंगे। पहला, यथार्थ योग किसे कहे। बाबा ने तो बहुत सहज करके बता दिया कि योग माना याद, बहुत सरल शब्द बता दिए, सरल तरीका बता दिया। लेकिन हम सब का अनुभव है कि याद भी किसी की भी ऐसे ही सहज और स्वाभाविक आती नहीं है। जब तक उस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, जो कुछ भी है उससे हमारा थोड़ा अटैचमेंट नहीं हो, उससे कहीं प्राप्ति का अनुभव न किया हो, जब तक वो हमारे दिल के करीब नहीं है, तब तक याद भी स्वाभाविक नहीं हो सकती है। क्योंकि हम सब राजयोगी हैं, इसलिए नियम प्रमाण, हम अमृत वेला भी उठते हैं, बहुत है जो नियम पूर्वक नुमाश्याम भी करते होंगे, लेकिन यथार्थ योग वो है जिसमें मैं आत्मा स्वयं को भूल जाऊं और बाबा में समा जाऊं। एक बार हम ट्रैवल कर रहे थे, माउंट आबू से आबू रोड आ रहे थे, आदरणीय निर्वैर भाई जी के साथ साथ हम थे। बरसात के दिन थे, चारों तरफ बादल थे। एक दृश्य देख करके उन्होंने हमारा ध्यान खिंचवाया कि ये दृश्य देखो। वो दृश्य था पहाड़ की चोटी बादलों में समा गई थी, चोटी दिखाई नहीं दे रही थी, जैसे बादल और पहाड़ एक हो गए थे। तो उन्होंने हंसते हंसते कहा, देखो ये है यथारथ याद। हम बाबा की याद में ऐसा समा जाए जो मैं ना रहूं। आत्मिक स्मृति से भी ऊपर कंप्लीट बुद्धि का समर्पण, ये यथारथ योग का पहला कदम है। और साकार बाबा के जीवन में हमने इस चीज को प्रैक्टिकली देखी। जब से साकार बाबा के जीवन में शिव बाबा का आना हुआ और ब्रह्मा बाबा को ये रियलाइज हुआ कि स्वयं परम शक्ति डायरेक्शन दे रही है, कार्य करा रही है, पहले दिन से पहले पाठ को खुद पर अप्लाई किया। हिस्ट्री हम सब ने सुनी है, बाबा ने शिव बाबा की बातों में अपने आप को मिलाने के लिए, अपने देह भाव को खत्म करने के लिए दीवारों पर लिखना शुरू किया था, मैं आत्मा हूं, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है। जब मैंपन भूला, जब मेरेपन को तेरे में ट्रांसफर किया, तो योग लगाने की जरूरत ही नहीं रही, योग एक स्वाभाविक चीज बन गई। जब मेरे और तेरे के बीच में और कुछ है ही नहीं, अर्थात मेरे और मेरे बाबा के बीच में कोई भी अपनी और मुझे आकर्षित करने वाली चीज है ही नहीं, तो मेरा योग डिस्ट्रैक्ट कैसे होगा, मेरा ध्यान इधर उधर कैसे जाएगा। और इसीलिए योगी की स्थिति में जो पहली इनिशियल स्थिति कही है वो कर्म योगी की स्थिति है। कर्म करते करते में, हर कर्म में बाबा को याद करूं, मैं हर कर्म में बाबा के साथ का अनुभव करूं। तो पहला कदम, जितना अधिक समय कर्म करते करते मैं बाबा की याद में समाई हुई हूं, ये अनुभव मेरा बढ़ता जा रहा है कि अब मैं और मेरा बाबा साथ साथ है, मेरे हर कार्य में बाबा साथी है, मेरे हर कार्य को प्लान भी मेरा बाबा कर रहे हैं। जब हमारी आंतरिक ये अनुभूति बढ़ती जाती है तो कर्म में योग और योग में कर्म, ये स्थिति धीरे धीरे हमारी सहज बनती जाती है। जब कर्म में ही योग आ जाता है, अर्थात कर्म में बाबा की याद समाने लगती है, तो अपने आप मैंने किया, मैं कर रही हूं, आज मैंने कितना अच्छा सेवा का कार्य किया, ये सारी बातें बाबा में समझ आएगी। जितनी देहभान और देहभाव वाली बातें सामने आती है वो अपने आप बाबा में समा जाती है। कोई ने कहा नहीं, कोई ने पूछा नहीं, कोई ने, ये योग को तोड़ने वाली बातें हैं। इतनी अच्छी सेवा की, कोई ने अप्रिशिएट भी नहीं किया, इतना अच्छा सेवा का कार्य इतनी अच्छी तरह संपन्न किया, किसी ने मेरी हाजिरी को नोट भी नहीं किया, ये सारी नेगेटिव बातें, मैंने जो कुछ किया मेरा बाबा साथ है, मैंने जो कुछ किया मेरे बाबा के डायरेक्शन से किया, मैंने जो कुछ किया मेरे बाबा के यज्ञ के लिए किया। जब इतना बाबा के साथ का मेरापन डेवलप होता है तब वो याद यथारथ याद बन जाती है। अब सवाल ये है कि ऐसी स्थिति हमारी बने कैसे। हमारे पास वैरायटी जिम्मेवारियां हैं, जो घर गृहस्थ में है उनके पास वैरायटी प्रकार के कारोबार है, दुनिया भर की बातें उनके सामने आती है। प्रश्न ये उठता है कि इतना प्यार कैसे हमारे जीवन में समा जाए या भर जाए। दो आधार से स्नेह या प्यार होता है, या तो व्यक्ति का संबंध बनता है तो धीरे धीरे प्यार बन जाता है। कईयों को अनुभव होगा, देखा नहीं था, संबंध हुआ और धीरे धीरे जीवन में स्नेह बढ़ने लगा। और दूसरा, कुछ आत्माएं ऐसी होती है उनको देखकर ही हमें अच्छा लगता है, या उन आत्माओं से कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्राप्ति का अनुभव है इसीलिए हमारा उन आत्माओं से स्नेह या संबंध बन जाता है। दोनों ही तरह से देखो, कल तक हमें समझ नहीं थी कि हम आत्माओं का पिता शिव बाबा है, अब समझ आई है। जितना जितना संबंध क्लियर होता जा रहा है तो एक पिता के नाते, बंधु के नाते, संबंधी के नाते, आत्मा के सर्व संबंधी के नाते भी धीरे धीरे हमारा प्यार बढ़ता जाता है। अगर प्राप्तियों को देखो, लौकिक में देहधारियों से हमने जितनी भी प्रकार की और जितनी प्राप्ति की उससे कई गुना श्रेष्ठ प्राप्तियां हम प्यारे बाबा से कहो, बाप दादा से कहो कर रहे हैं। जितनी बाबा के पास से प्राप्तियों की अनुभूति मेरी बढ़ती जाएगी उतना भी मुझे योग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे नेचुरल बाबा याद आएंगे। अब ये प्रयोग की चीज है, बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा को कहकर निकलती हूँ, बाबा जिस कार्य के लिए जा रही हूँ, इतनी इतनी बातें हैं, आवाज साथ रहना। मैं आवाहन करके निकलती हूँ और अगर उस कार्य में मुझे बाबा के साथ का अनुभव हो जाता है, जो कार्य मुश्किल लगता था वो कार्य भी सहज संपन्न हो जाता है, दिल से थैंक्स किसके लिए निकलेगी, बाबा के लिए। अगर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार जीवन में ऐसे अनुभव हमारे बढ़ते जाएं, तो बाबा को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बाबा नेचुरल याद आएगा। क्योंकि अब मुझे अनुभूति हो गई है कि जहां बाबा साथ है वहां सफलता हुई पड़ी है। तो यथार्थ याद ये है जिसमें याद की एक प्रक्रिया है। अब कई बार इस प्रक्रिया में थोड़ा सुस्ती, थोड़ा झुटका, थोड़ा आलस्य का अनुभव भी हमारे में से बहुत सारे भाई बहन करते हैं। कारण ये है, साइकोलॉजिकली भी देखो, हमें नींद कब आती है, जैसे ही आत्मा के सब संकल्प बंद हो जाते हैं, हम रिलैक्स हो जाते हैं, बहुत सहज आंखें बंद हो जाती है। हम भी बाबा की याद में बैठते हैं, बुद्धि अब तक बहुत संकल्प विकल्प में थी, बाबा की याद में बैठे बुद्धि थोड़ी शांत हो गई, और इसीलिए वो एक नेचुरल प्रक्रिया के रूप में सुस्ती या नींद का आना स्वाभाविक हो जाता है। योग में ये एक ऐसा पॉइंट है, जैसे ही बुद्धि निर्संकल्प होती है, हम रिलैक्स हो जाते हैं, तुरंत बुद्धि को बाबा के साथ स्विच करना पड़ेगा। चाहे वो ज्ञान का रुरिहान करे, मनन चिंतन करे, चाहे वो बाबा के साथ रुरिहान करे, लेकिन वो जो लेवल है, वो लेवल में हमने योग को यथार्थ रूप से कार्यान्वित किया या अपने संकल्पों को राइट डायरेक्शन में कार्यान्वित किया, तो ही हमें योग के द्वारा अनुभूति या प्राप्ति होती है। अन्यथा हम बैठते हैं, एक घंटा बैठे, बीच बीच में गीत बजा तो गीत के शब्दों के साथ मुझे बाबा की याद आई, फिर ये चुस्ती और फुर्ती इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि हमारा दिमाग शांत हो जाता है, चिंतन खत्म हो जाता है। यथार्थ याद ये है जिसमें मैं बैठूं और मेरा बाबा के साथ का वार्तालाप, चिंतन इतना सक्षम बन जाए जो और ही अंदर रोशनी रोशनी का अनुभव हो जाए, या मैंने बाबा के साथ रुरिहान करना शुरू किया और मन खुशी में नाचने लगे, वाह बाबा वाह जीवन संगम पर क्या मेरा भाग्य बना दिया। ये श्रेष्ठ स्मृति ही यथार्थ योग है। अगर योग यथार्थ है तो योग से जो सबसे पहली प्राप्ति है वो है योग द्वारा विकर्मों का विनाश होना। जितना मेरा योग बल बढ़ता जाएगा इतना जो कमी कमजोरियां, जो नेगेटिविटीज, जितना फोर्स से मेरे पास कल तक आती थी, धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगी। सचमुच मेरा योग यथार्थ है इसका ये सबसे सटीक सबूत है। किसी के पास क्रोध बहुत होगा, बात बात में गुस्सा आ जाता है, बात बात में, कहते हैं ना चढ़ा ही रहता है हमेशा, चढ़ा हुआ ही रहता है, जरा सा कोई छेड़ दे बस इतनी देर होती है। ऐसे गुस्से वाले की अनुभूति ये बनेगी कि जितने फोर्स से और जितना समय मेरा गुस्से का रहता था कम हो रहा है, फोर्स भी कम हो रहा है, जितना घंटा मेरे अंदर वो गुस्से की असर रहती थी वो भी अभी धीरे धीरे कम हो रही है। आत्मा की ये अनुभूति यथार्थ याद से बढ़ती जाएगी कि अब मुझ आत्मा की कर्मेंद्रियां धीरे धीरे शीतल होती जा रही है, शांत होती जा रही है। अगर कर्मेंद्रियां अब भी चंचलता कर रही है इसका मतलब मैं योग लगा रही हूं, लेकिन मेरा योग जैसा होना चाहिए राइट प्रक्रिया में नहीं है। अगर हम ब्राह्मणों के लिए कोई अज्ञानी कहे कि भाई छोड़ दो ये तो बहुत गुस्से वाला है, सफेद कपड़े पहनता है लेकिन गुस्सा बहुत है, क्या ये हम ब्राह्मणों के लिए शोभा है? हमने कर्मेंद्रिय को नहीं जीता। अगर कोई कहे कि इसकी दृष्टि वृत्ति ठीक नहीं है, भले ही आश्रम में जाता है, बच के रहना, इसका मतलब अभी तक मेरी कर्मेंद्रिया इतनी चंचल है। अब जब कर्मेंद्रिया ही इतनी चंचल है तो वो योग युक्त स्थिति का अनुभव होना संभव ही नहीं है। ये दोनों संबंधित है, इसलिए हमें अपने योग को ही नहीं योग के बल को अब बढ़ाने की जरूरत है। विधि पूर्वक बैठे, दूसरा लक्ष्य लेकर बैठे, जब भी बैठे योग में लक्ष्य लेकर बैठे, आज बाबा से मीठी मीठी रूढ़ी हन करनी है, आज मुरली में बहुत अच्छी पॉइंट मिली है उस पॉइंट पर हमें रूढ़ी हन करना है, लक्ष्य लेकर बैठना है, कोई अनुभूति आज मुझे लेकर उठना है, कोई समस्या है उसका निवारण बाबा से लेकर उठना है, लक्ष्य लेकर बैठे। तीसरी बात, जब भी बैठे अपने मन को प्रोग्राम देकर के बैठो कि आज आधा घंटा बैठना है, एक घंटा बैठना है, मुरली क्लास के पहले गए हैं तो जो ड्यूरेशन है उतना समय बैठना है, अपने मन को प्रोग्राम दे करके बिठाओ। नहीं तो होता क्या है, हम योग में जाकर बैठते, छोटा मोटा कोई काम याद आया, फिर काम में भागे, फिर इधर गए, फिर उधर गए, जितना मन डिस्ट्रैक्ट ज्यादा होता है उतना योग नहीं रहता है, वो एक नियम निभाने के जैसा काम हो जाता है। हम बैठे और बस ऐसी महसूसताएं, ऐसा समा गई है जो आजू बाजू वाले को वो वाइब्रेशन फील हो कि पता नहीं इससे कितनी खुशी का वाइब्रेशन आ रहा है, नहीं कितनी अच्छी है। बैठने के बाद उसे समझ भी नहीं आए क्या हो रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है। योग की हमारी आजकल सब इजी हो गया है, पहले यज्ञ में भी कहीं सोफा नहीं थे, कुर्सी सोफा तो बहुत कम होते थे। जो बहुत पुराने भाई बहन है उनको मालूम होगा ओम शांति भवन में कितनी कुर्सियां थी, सब नीचे बैठते थे, सारी रात बाप दादा का आना होता था, कोई कुर्सियां सोफा कुछ नहीं होता था। धीरे धीरे हमें कंफर्ट बहुत मिल रहा है, सुविधाएं बहुत मिल रही है, लेकिन सुविधाओं के साथ साथ हम इजी भी बहुत हो रहे हैं। सुविधा का हमें फायदा लेना है, फिजिकली हम कंफर्टेबल बैठे हैं अभी, घड़ी घड़ी पांव हिलाने की जरूरत नहीं है, तो हम ये अभ्यास करें कि हम लंबा समय बिना हिले डुले बाबा की याद में समा जाए। कितना समय में कर सकती हूँ, ये प्रयोग है। जब भी योग में बैठे ये अंदर का चेकिंग साथ साथ करते जाएं कि आज जितना समय में बाबा की याद में बैठी सचमुच बाबा की याद कितना समय रही। मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मैं बाबा की याद में बैठी हूँ, दूसरा कोई ने आवाज दी, कोई का फोन आ गया, बुद्धि योग वहां ट्रांसफर हुआ, जवाब मानो देना भी पड़ा, दे भी दिया, फोन रखा और वहां से मेरा बुद्धि का स्विच बंद हो जाए, ये प्रयोग है योग के। ज्ञान सबसे इजी सब्जेक्ट है, सुना बहुत करके लिखा, लिखने की चीज पढ़ी अंदर बैठ गई, सेवा तो वैसे ही बहुत रस वाला विषय है क्योंकि डायरेक्ट कमाई होती है सेवा में, जो सबसे ज्यादा मेहनत वाला विषय है ना वो योग है। इसीलिए अपने को मुझे बिठाना पड़ेगा, लक्ष्य लेकर के टाइट करना पड़ेगा, कि इस समय मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी अनुभूति में बैठना है, बाकी कोई भी चीज आई और गई, मेरे मन पर उसका प्रभाव न पड़े। जब तक ये मेहनत हम नहीं करेंगे, यथार्थ याद हो नहीं सकती है। वो काम चलाओ योग है, निभाने वाला संबंध है, चलाने वाली बातें हैं, और इसीलिए योग से आत्मा को जो रस मिलना चाहिए, योग में बैठने के बाद उठने की दिल नहीं हो। यहाँ तो घड़ी देखते, व्हाइट लाइट अभी तक हुई नहीं, व्हाइट लाइट वाला कहाँ, इधर उधर चला तो नहीं गया, क्या ये योग है? सोचे हम, ये योग है? हमारा योग तो लाइट से चल रहा है, गीत से चल लग रहा है। अरे ऐसा समा जाए, व्हाइट लाइट भी हो जाए तो, अरे अभी तो बाबा की याद में बैठे, समय इतना जल्दी पूरा हो गया। हमें याद से नीचे आने की दिल नहीं हो, ये यथार्थ याद है। और ये प्रयोग की चीजें हैं, बिना प्रयोग के जीवन में नहीं आएगी। योग का सबसे पहला प्रयोग हमें स्वयं पर करना है, आत्मा के स्वभाव, आत्मा के संस्कार। हम रोज सुबह पढ़ाई पढ़ते हैं और अपने आप को भी पक्का कराते, बाबा को भी विश्वास दिलाते, बाबा हम तो नंबर वन लक्ष्मी नारायण ही बनेंगे। ये सभा में कोई बैठा है जो कहे कि त्रेता का राम सीता कोई को तो बनना पड़ेगा ना, हम तैयार है, जरा हाथ उठाओ, हाथ उठाओ भाई, जो राम सीता बनने के लिए तैयार है कोई? देखो एक भी नहीं उठा रहा है। तो हम सबका लक्ष्य क्या है? नंबर मालूम है, नंबर वन फिक्स है, फिर भी अंदर की लगन तो यही है कि नंबर वन आत्मा के साथ जाकर जन्म ले और जीवन बिताए, लक्ष्य तो यही है ना, अच्छा तो यही लग रहा है ना। हम आध्यात्मिक पुरुषार्थ कर भी इसलिए रहे हैं कि हम नंबर वन देवता जाकर बने, लेकिन देवताई जीवन की जो विशेषताएं और गुण है, आत्मा संस्कार तो यहां से लेकर जाएगी। तो योग का प्रयोग सबसे पहला हमें स्वयं के स्वभाव और संस्कार पर करना है। जैसे आजकल ये थियरी देते हैं ना कि भाई हाथ पर चोट आई है तो हाथ को योगदान दो, हाथ ठीक हो रहा है। कैंसर हुआ है, कैंसर के सेल्स को योगदान दो, मेरे शरीर से कैंसर के सेल्स निकल रही हैं। पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं ना। तो क्या हम अपने ही स्वभाव और संस्कार को थोड़ा रियलाइज करके यही योग का प्रयोग उसके लिए नहीं कर सकते? हर एक को खुद को मालूम है ना, दूसरे को पता है नहीं, खुद का खुद को तो पता है, मुझे गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन मेरे अंदर बहुत है, या किसी को पता नहीं है लेकिन मुझे दृष्टि वृत्ति को संयम में रखने में बहुत मेहनत पड़ती है, खुद को तो पता है ना। वहां योग के प्रयोग हमें शुरू करना है, इतना योग का बल बढ़े कि योग के बल से हम जीत की स्थिति का अनुभव करें। यहां कोई फिजिकल लड़ाई तो है ही नहीं जो किसी को हम मार गिराएंगे, हमारी जो लड़ाई है वो हमारे ही अपने बदले हुए स्वभाव और संस्कार से है। यहां मैं योग का प्रयोग करूं, रोज मैं बाबा के पास बैठूं, मेरी अपनी कमी को सामने लाके मैं बाबा को सौंप दूं, और इस पर मुझे विजयी बनना है। हाँ, इसमें हम ज्ञान के मनन चिंतन को आधार या साधन बना सकते हैं। मिसाल, क्रोध को जीतने के लिए बाबा ने ज्ञान की जो पॉइंट्स कही है, गुस्सा आने के जो रीजन से उसमें ड्रामा की पॉइंट्स, फुल स्टॉप लगाना, नॉलेज की जो पॉइंट्स इसमें मददगार है, हम उसका सहयोग ले सकते हैं। यह भी तो रूढ़िहान हुई ना, मनन चिंतन हुआ ना। मूल बात है, मैं जितना समय बैठूं, चिंतन एक दिशा में चले, पॉजिटिव चले, और वो चिंतन का जो लक्ष्य बिंदु है वो बाबा में समझ आए। चिंतन अपने साथ करो, अपने लिए करो। हम बाहर दुनिया के लिए मनसा सेवा में समय लगाते हैं। बाबा ने कहा है, योग द्वारा हम विकर्मों को खत्म कर सकते हैं, योग द्वारा विकर्मा जीत बन सकते हैं, योग द्वारा कर्मेंद्रिय जीत बन सकते हैं, और योग द्वारा विश्व का मालिक बन सकते हैं। सारे स्टेप्स बाबा ने दे दिए हैं। योग द्वारा अपने ही पुराने स्वभाव और संस्कारों को जीतना, जितने विकर्म मेरे भस्म होते जाएंगे उतना ये संस्कारों का फोर्स कम होता जाएगा। तो योग से मैंने विकर्मों को भस्म किया और मेरे संस्कारों को शीतल किया। दूसरा, योग का प्रयोग करके अपनी कर्मेंद्रियों को मुझे जीतना है। मिसाल देती हूँ, हमने हमारी सभी मुरब्बी दादियों को देखा, कितनी बार ऐसा हुआ होगा, भट्टी चल रही है, दादी जानकी जी के पास गए, शाम को दादी जी सबको दृष्टि देने आएंगी, और हंसाबेन कहती थी, देखो ना अभी तो आज सोई है दादी, शाम को अगर दादी को ठीक होगा तो आ जाएंगी। शाम को 7:05 हम तो फोन भी बाद में करते थे कि दादी जी आ रही है कि नहीं, दादी जी यहाँ गेट में एंटर हो जाती थी। ये कर्मेंद्रिय जीत स्थिति का हमारी दादियां मिसाल है। हमारी रतन मोहिनी दादी जी, वैसे जनरली किसको जल्दी पहचानती नहीं थी, बहुत बार ये महसूस किया, दादी के सामने गए, दादी के सामने जाकर सिर्फ एक स्माइल दी, और दादी ने पहचान देने का एक एहसास सामने दिलाया। चाहे कर्मेंद्रिया कोई भी स्थिति में थी, लेकिन उन्होंने जिस समय जो कार्य करना था वो मालिक होकर के कार्य कर सके। जितनी भी हमारी मुरब्बी दादियां रही, जितने भी हमारे वरिष्ठ भाई दादाएं रहे, उन्होंने अपने मनोबल से अपनी कर्मेंद्रियों को आवश्यकता के समय सेवा में लगाया। अब ये प्रयोग है, जब भी कोई छोटी बड़ी बात आती है, शरीर जरा साथ नहीं दे रहा है, लेकिन उसी समय कोई बहुत अच्छा सेवा का चांस मिला है या सेवा के लिए इशारा मिलता है, हमारे लिए दुविधा बनती है, शरीर को संभाले या सेवा करे। ऐसे समय पर अपने योग की ताकत को बढ़ा करके, मन की शक्तिशाली स्थिति के आधार पर उस समय तन को कार्य में लगा करके देखो, बहुत वंडरफुल अनुभव होंगे, वंडरफुल मिराकुलस अनुभव होंगे। सोचा भी नहीं था हमने ये तन से इतना कार्य कारोबार हो जाएगा, लेकिन उस समय बाबा करा देगा, और ये कराने के बाद जो आत्मा को प्राप्ति की खुशी आएगी ना, ये हमारे जीवन को योगी बनाने में बहुत हेल्प करेगी। ऐसे प्रयोग योग के हमें जीवन में करने हैं। परिस्थिति विरोधाभासी है, विरुद्ध है, लेकिन बाबा की याद के बल से, बाबा की मदद से उस कार्य को हमने संपन्न किया। ये प्रयोग है। हमारे बड़ों ने असंभव दिखने वाले कार्यों को भी याद के बंध से संभव करके दिखाया। इतिहास यज्ञ का भरा पड़ा है। शुरू शुरू में दिल्ली में जब बहुत बड़ा मेला लगना था, सुनी होगी ये बात कईयों ने, दादी जी ने उस समय योग का प्रोग्राम दिया, भाई 24 घंटा योग चलाओ। रात को 12 बजे कोई ऑफिसर फोन करता है कि अब आप सब निश्चिंत हो जाओ, गवर्नमेंट ने पहली बार अपने कार्यक्रम के लिए जगह चेंज की है और आपको जगह दी है। ये असंभव दिखने वाले कार्य भी हमारे बड़ों ने योग के बल से, इसको मैं अगर और सरल करके कहूं तो याद की शक्ति से शक्तिशाली संकल्प पैदा हुए और ये शक्तिशाली संकल्पों ने सफलता दिला दी। हमारे बड़ों ने ये कदम कदम पर प्रयोग किए, उसी तरह हमें भी हर कदम में ये प्रयोग करना है। मुझे कर्मेंद्रिय जीत बनना है और इसीलिए मेरी कर्मेंद्रिया आज मुझ आत्मा को सहयोग दे रही है या नहीं दे रही है, लेकिन मुझे जो कार्य करना है बाबा की मदद से वो संपन्न होकर रहेगा। ये करके देखो, जितनी अनुभूति प्रैक्टिकल प्रयोग से बढ़ती जाएगी उतना योग बाबा से लगाना नहीं पड़ेगा, अपने आप लगता जाएगा। और जब एक बार मुझे अनुभव हुआ, दो बार अनुभव हुआ मदद का, तीसरी बार अनुभव हुआ, तो बुद्धि को कहना ही नहीं पड़ेगा, वो पहले ही बाबा को याद करना शुरू कर देगी। अब इस प्रयोग का हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या फायदा? जब मैंने अपने शक्तिशाली संकल्प से, दृढ़ मनोबल से कोई कार्य बाबा की याद में करना शुरू किया, एक वो कार्य बाबा कैसे भी संपन्न कराएगा, दूसरा बहुत सूक्ष्म बात है, इतनी एक्यूरेट टचिंग मिलेगी कार्य की, जिस समय जो कार्य होना होगा, जैसे होना होगा, जितना होना होगा, उसकी बिल्कुल एक्यूरेट टचिंग आत्मा को मिलेगी। ये प्रयोग करने की चीज है। तो एक कर्मेंद्रिय जीत, दूसरा सूक्ष्मेंद्रिय जीत। सूक्ष्मेंद्रिय मन बुद्धि संस्कार, मन और बुद्धि भी योग युक्त ऐसी शक्तिशाली बन गई है जो वो बाबा की टचिंग को एक्यूरेट पकड़ सकती है। लेकिन ये अनुभव करके देखना पड़ेगा, ये प्रयोग में लाना पड़ेगा। स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ाते ना तो एक विषय होता है अलजेब्रा। इसमें जो पूरा दाखिला गिनना होता है वो ऐसे गिनना होता है, पहले अज्यूम करना होता है एक्स बराबर इतना, फिर पूरा दाखिला गिन करके लास्ट में उसका जवाब आता है। पहले तो एज्यूम ही करके लिखना होता है कि एक्स बराबर इतना। उसी तरह यहां भी योग के फल को या जो प्राप्ति चाहिए उसको सामने लाओ, फिर उस पर कार्य करना शुरू करो और अंत में हम बहुत अच्छे अनुभव के साथ पास होकर अपने को अनुभव करेंगे। लेकिन गलती क्या होती है पता है? गलती ये होती है कि खुद अनुभव करके देखने के बजाय हम दूसरों के अनुभवों के साथ कंपेयर करते हैं। उसको ऐसा अनुभव हुआ, ये करने गया उसको तो ये लगा, ऐसी महसूसता आई, पता नहीं अब मेरे पास क्या महसूसता आएगी। दूसरों ने क्या भी अनुभव किया वो उनकी अपनी अवस्था थी। मैं अपनी श्रेष्ठ स्मृति में रहकर कार्य करूं तो मुझे अनुभूति भी इतनी ही शक्तिशाली मिलेगी। अपने मन बुद्धि पर भी ये प्रयोग करके देखो। इसका परिणाम ये आएगा कि धीरे धीरे बुद्धि में व्यर्थ चलना कम होता जाएगा। अभी तो हमारी बहुत एनर्जी व्यर्थ को खत्म करने में जाती है। जब ऐसे शक्तिशाली अनुभव आत्मा करना शुरू करेगी तो अपने आप व्यर्थ कम होता जाएगा, परसेंटेज बहुत नॉमिनल जाके रह जाएगी। आज के आज हम इतना परफेक्ट तो नहीं बनेंगे जो व्यर्थ चलना ही बंद हो जाए, लेकिन हाँ व्यर्थ चलने का जो फोर्स है, व्यर्थ चलने की जो मात्रा है, व्यर्थ चलने का जो ड्यूरेशन है, ये सब धीरे 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 खत्म होते होते मर्ज होता जाएगा। और आत्मा की आंतरिक स्थिति ही धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगी। और ये ऊपर उठना क्या है, ये सभी योग के प्रयोग का अगर सार देखे तो ये है, जो कई मुरलियों में बाबा ने कहा है कि जब हलवा तैयार हो जाता है ना तो वो किनारे छोड़ देता है। ऐसे आत्मा भी जब धीरे धीरे अपनी वो नेचुरल योगयुक्त अवस्था को अनुभव करना शुरू करेगी, आकर्षणों से धीरे 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 हम दूर होते जाएंगे। व्यक्ति का आकर्षण, वस्तु का आकर्षण, वैभव का आकर्षण, साधन का आकर्षण, धन माल मिल्कियत का आकर्षण, कोई भी प्रकार का प्रभाव, सिर्फ बुरा ही प्रभाव नहीं होता है, प्रभाव अच्छा भी कई बार होता है, वो भी नुकसान करता है। इन सब नेगेटिविटी से आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठेगी, या अगर एक शब्द का मैं प्रयोग करूं तो अंदरूनी अवस्था हमारी ऐसी होगी जिसमें एक अंदर का वैराग्य अनुभव होगा। ये भी मिले, ये भी मिल जाए, ये भी ले लूं, ये भी कर लूं, इन आकर्षणों में बुद्धि योग जाएगा ही नहीं। जो है ड्रामा अनुसार परफेक्ट है, लेकिन मुझ आत्मा को अब अपनी परफेक्ट स्थिति की ओर जाना है। डाइवर्ट हो गए, अभी तो छोटी छोटी बातें असर करती है। बड़े भाई को ज्यादा मिला, मेरे को कम मिला, मिल्कियत में चार भाग हुए, वहां तो तीन को तो ठीक मिला, यहां तो अन्याय हो गया। ठीक है, लेकिन वो मेरी अवस्था को बिगाड़ने का कारण क्यों बने? उस समय नॉलेज का एप्लीकेशन ये योग का प्रयोग है। मुझे मेरी अवस्था को लंबा समय हलचल में नहीं रहने देना है, ये प्रयोग है। यहां योग का प्रयोग हम अनुभव में लाए या प्रैक्टिस में लाए। हलचल में आने वाली स्थिति है, संजोग है, किसी की अचानक मृत्यु हो गई है अपने की, ऐसी कोई भी बातों को जरा सोच के देखो। हलचल वाली स्थिति है, परिस्थिति है, बात है, लेकिन मुझे स्वयं को बहुत जल्दी से जल्दी कम समय में अचल बनाना है। ये योग का प्रयोग है। योग के जो प्रयोग है ये हमारे प्रैक्टिकल डे टू डे जीवन में करने वाली चीज है। अगर मैं अपनी अवस्था को ही स्थिर नहीं बना सकती हूँ, कभी कभी ये चिंतन चलता है, हम मनसा सेवा शक्तिशाली कैसे कर सकेंगे? हमें तो अंतिम दृश्य में सारे विश्व को सकाश देना है। मैं अपनी कर्मेंद्रिय को सकाश नहीं दे पा रही हूँ, मैं अपने ही संबंधों में चलो सुमेल नहीं हो पा रहा है, लेकिन कम से कम मेरे मन में किसी के लिए अभाव तो नहीं रहे। मैं अपने आप से इतना प्रयोग तो कर सकती हूँ ना। किसी ने मेरे साथ ठीक व्यवहार नहीं किया, उसको मेरे लिए जो भी है, लेकिन मेरे पास बाबा की नॉलेज है, मुझे प्रयोग स्वयं पर ऐसा करना है जो मेरा मन धीरे धीरे उसको माफी देकर समझ कर कमजोरी से नॉलेजफुल होकर कैसे भी मुझे अपनी अवस्था को धीरे धीरे स्थिर बनाना है। कोई क्या भी है, ये योग का प्रयोग है। आसपास का वायुमंडल विरोध का है, लेकिन वो विरोध की कोई नेगेटिव असर मुझ आत्मा पर न आए, ये योग का प्रयोग है। जो ज्यादा स्ट्रांग होगा उसकी अनुभूति बढ़ेगी। अगर नेगेटिविटी स्ट्रांग है तो लोगों को भी नेगेटिव अनुभव होगा। उसके बजाय मेरी पॉजिटिविटी स्ट्रांग है तो अनुभव में भी वो नेगेटिविटी की परसेंटेज, मानो फुल पॉजिटिव कोई नहीं भी होता है, लेकिन वो नेगेटिविटी की परसेंटेज तो कम हो जाएगी ना मेरी पॉजिटिविटी से। ये योग का प्रयोग है। तो एक कर्मेंद्रिय पर, दूसरा सूक्ष्मेंद्रिय पर, अपने स्वभाव संस्कार पर, चौथा प्रयोग करो अपने संबंधों पर, जिसके साथ मेरे जो भी संबंध है, हो सकता है कोई बात, कोई पिछला कर्म का बंधन ही बहुत स्ट्रांग है। अब वो आत्मा आपसे पिछला अपना लेन देन पूरा करने ही आई हुई है, वो सुखदायी कैसे हो सकती है? और हमारा मन इससे डिस्टर्ब है कि ये मेरे ज्ञान में, मुझे चलने में बहुत बड़ी बाधा है, ये एक सुधर जाए ना तो मैं तो एकदम उड़ता पंछी बन जाऊं, फरिश्ता बन जाऊं। जो भी हमारे संबंध है, संबंध में जो भी दिक्कत है, उसका कारण हमारा अभी भी ज्ञान में आने के बाद भी मोह का परसेंटेज जितना कम होना चाहिए उतना हुआ नहीं है। और वो मोह है, इसका सबूत हमें घड़ी घड़ी उस व्यक्ति से बात करने की दिल होती है, फिर वो माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, दोस्त है, जो भी संबंधी है जिसके साथ हमारा अटैचमेंट है, उसकी आवाज सुनने की दिल घड़ी घड़ी होती है। अब मुझे देहधारी की आवाज सुनने की इतनी आकर्षण है, वो ऊपर वाला बाबा अपनी आवाज मुझे दे भी रहा है, बुला भी रहा है, वो आवाज मुझे सुनाई कैसे देगी? कनेक्शन तो कहीं जो और जुटा हुआ है। तो जब तक देह के संबंधों से हमारा मन थोड़ा इधर बाबा की ओर झुकता नहीं है, तब तक ये योग शक्तिशाली योग हो नहीं सकता है। ये योग का प्रयोग है। जितने भी मेरे देह और देह के संबंधी है, वो सब पार्ट बजाने के लिए मेरे सेवा साथी है। अगर वो अज्ञानी है तो समझ करके चले, ये बात तो हम नए नए को सिखाते हैं कि भगवान ने इस घर में, इस परिवार में इन आत्माओं की सेवा के लिए हमें रखा हुआ है। जब हमारी भावना बदलेगी, स्मृति बदलेगी, बीच में बाबा आएगा, तब हमारे संबंधों में से हमारा मोह कम होगा। मोह कम होगा तो बाबा में बुद्धि अटैच होगी, या इसको दूसरे शब्दों में कहे, बाबा से अटैचमेंट बढ़ेगा तो अपने आप देह के संबंधों से हमारा अटैचमेंट कम होता जाएगा। ये प्रयोग है, मुझे देह और देह के संबंधों के अटैचमेंट को बाबा की याद से खत्म करते जाना है, किनारे छोड़ते जाना है, क्योंकि मुझे कर्मातीत बनना है, अपनी संपन्न अवस्था तक पहुंचना है। तो ये कोई भी किनारे पर जब तक लगे हुए हैं, ये किनारा मुझे छूटने नहीं देगा, उड़ने नहीं देगा। ये चेक करना पड़ेगा और उन किनारों को ढूंढ करके याद की शक्ति से उसको खत्म करना है। ये योग के प्रयोग है। योग की अगर परिभाषा को मैं रिपीट करूं, एक्चुअल योग की जो व्याख्या बाबा ने दी है, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल, चार पार्ट है उसके, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल, आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। चार स्टेप है योग के। हम लोग दो स्टेप कर लेते हैं, दो स्टेप छोड़ देते हैं। देह और देह के संबंधों को भूल, ठीक है, भूले, बाबा बाबा किया, लेकिन उसकी आगे का जो स्टेप है ना, स्वयं को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। ये स्टेप्स में गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए योग की गहरी अनुभूति में भी गड़बड़ हो जाती है। लगभग मुरली में बाबा की एक बात रोज रिपीट होती है, खुद को आत्मा समझो। भाषा अलग अलग हो, शब्द अलग अलग हो, बात अलग अलग तरीके से कही जाए, लेकिन आत्मा समझने का चिंतन, इस पर बाबा ने बहुत जोर दिया और ब्रह्मा बाबा ने तो ये करके दिखाया। हम ये योग का प्रयोग करें कि मैं बहुत सारे मिसाल, अभी हम शांतिवन में हैं, हजारों के बीच में हैं, कोई साफ सुथरा होगा, कोई थोड़ा कम साफ सुथरा होगा, कोई के पास बैठो तो थोड़ा बास भी आती होगी, कोई देखो तो परफ्यूम डाल के भी आया होगा। कोई भी आत्मा मेरे बाजू में आकर बैठती है, मेरा मन ये कहता है आत्मा भाई है, ये अब नजर जाती कौन आके बैठा है, ये देह भाव है। ये सब छोटी 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 योग के प्रयोग है जो हमारी आंतरिक स्थिति को एकदम ऊपर उठा देंगे। कितनों के बीच हूं, मुझे ये पक्का याद रहता है कि ये सब भी आत्माएं हैं और बाबा के बच्चे हैं, जैसे भी हैं, मेरे परिवार के हैं, याद रहता है। या और कोई दृष्टि जाती है तो वो देह भाव वाली दृष्टि हो गई। जितनी बातें योग को शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा ने कही है, उसका प्रैक्टिकल अभ्यास ही योग का प्रयोग है। बहुत अच्छे अनुभव होंगे, एक्यूरेट टचिंग्स मिलेगी, असंभव कार्य संभव होते महसूस होंगे, हमने हमारी कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा बाबा की मदद से कार्य संपन्न कर पाई, ये अनुभव होगा। कर्मेंद्रिया, अपनी आसपास का वायुमंडल, अपने आप धीरे 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 शांत और शीतल होता जाएगा। बहुत सुखद अनुभव होगा जब आत्मा अपने को कर्मेंद्रिय जीत स्थिति का अनुभव करती है। विश्व का मालिक भी, जो बाबा ने कहा, पांच तत्वों का मालिक। सब तो वहां सत्युग में राजा नहीं बनेंगे, लेकिन मालिक तो सबको कहा, तो मालिक किस आधार पर? पांच तत्वों के मालिक। अब समय है और सब बातों से किनारा कर, सेवा भी अभी टू मच अपने आप हो रही है। पहले जितनी मेहनत करने की हमको दरकार नहीं रही अभी, तो बुद्धियों के इधर उधर कार्यों में, वो तो स्थिति और अवस्था से बाबा कार्य कराएगा, लेकिन अब वो पके हुए हलवे जैसी मुझे अपनी शक्तिशाली खुशबू वाली, और जो उसको अनुभव करे उसको भी शक्ति संपन्न स्थिति की महसूसता आए, ऐसा अब अपने आप को हमें तैयार करने का समय है। इस पर हम मेहनत करें, सेवा तो अपने आप होती चली जाएगी। प्लानिंग इसका करें कि अब अवस्था को हम शक्तिशाली कैसे बनाएं। इस वर्ष में हम लोग गुजरात वाले लकी हैं, जो इस साधना के मास में और वर्ष के प्रारंभ में ही हमें यहाँ तपस्या भूमि में आने का सुख मिला है। और भी बहुत सारे होंगे गुजरात के अलावा भी, लेकिन ये शुरू शुरू में वर्ष के प्रारंभ में आने का एक मौका मिला है, तो इस मौके का हम पूरा पूरा फायदा ले। स्वयं के बहुत सुंदर व्यक्तित्व के कल्पना चित्र को तैयार करें और उस पर आज से ही हम कार्य करना शुरू करें। रोज एक नया प्रयोग जीवन में करें जो हमारी अनुभूति को बढ़ाए और हमारा योगी जीवन बन जाए। योग लगाने वाले योगी नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले योगी बन जाए। ओम शांति। हम बहुत सुंदर अभ्यास करते हैं, बिल्कुल कुछ क्षणों के लिए सब कुछ भूल जाए। परमधाम में मेरा बिंदु बाबा बैठा है, शक्ति की किरणों से मुझे भरपूर कर रहा है। थोड़े समय, जितना भी समय गीत बजता है, व्हाइट लाइट होती है, हम बहुत गहरी अनुभूति में स्वयं को समा गए।